राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर
गिरिवर धारी। जय राधा
से अनेक भक्त महाराष्ट्र से आए हैं,
महाराष्ट्र के पंढरपुर में राज करने वाले भगवान विठ्ठल श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी द्वारका में रह रहे थे और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ परिहास किया। भगवान के परिहास से देवी रुक्मणी रूठ गई। आप सब जानते हैं जब प्रिया प्रियतम से रूठ जाती है उसे मनाना पड़ता है। रुक्मणी द्वारका से चली है, चलते 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 महाराष्ट्र में चंद्रभागा के तट पर पंढरपुर नाम के धाम में आई और भगवान श्री कृष्ण उनका पीछा करते करते आए हैं। देवी रुक्मणी जैसे स्त्रियां रूठती हैं तो अपने कमर पे हाथ रख के खड़ी रह जाती हैं, अपने कमर पे हाथ रख कर खड़ी रही और उनका अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण भी अपने कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे। एक दिन कृष्ण रुक्मणी को मनाने के लिए आए। पंढरपुर के नाथ है इसलिए पंढरीनाथ कहा जाता है।
बाजो 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 मना पांडुरंग बजो बजो मना पांडुरंग विठला। बजो 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 मना पांडुरंग विठला। बजो 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 मना पांडुरंग विठला।
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला।
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला।
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला।
पांडुरंग विठला बजो बजो मना पांडुरंग विठला।
बजो 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 मना पांडुरंग विठला।
बजो 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 मना पांडुरंग विठला।
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला।
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला।
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला।
पांडुरंग विठला
पंढरीनाथ विठला। पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला।
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला।
भजो 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 मन पांडुरंग 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 विठला।
भजो 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 मन
भजो 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 मन पांडुरंग विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला श्रीनाथ विठला
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला
पांडुरंग विठला विठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
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 भजो 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 मन 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 पांडुरंग विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला
विठ्ठल 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 पांडुरंग
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
भजो 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 मन 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 पांडुरंग विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला
विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
भजो 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 मन 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 पांडुरंग विठ्ठला
राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे
राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय
गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय
प्रभुपद 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 शैल प्रभुपद
प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद जय
प्रभुपद 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 शैल प्रभुपद
प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद शैल प्रभुपद
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
राधा माधव भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री कृष्ण बलराम की श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे
हरि वो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय छे श्लोक क्रमांक 20 गोमूत्रेण स्नापयित्वा
गोमूत्रेण स्नापयित्वा
पुनर्गोरजसार्भकम्
पुनर्गोरजसार्भकम्
रक्षां चक्रुश्च सकृता
रक्षां चक्रुश्च सकृता
द्वादशाङ्गेषु नामभि
द्वादशाङ्गेषु नामभि
गोप्य संस्पृष्ट सलीला
गोप्य संस्पृष्ट सलीला
अंगेषु करयो पृथक्
अंगेषु करयो पृथक्
न्यस्यात्मन्यथ बालस्य
न्यस्यात्मन्यथ बालस्य
बीजन्यासमकुर्वत
बीजन्यासमकुर्वत
अव्यादजो ग्रीमणिमास्तव जान्वथोरु
अव्यादजोङ्ग्रिमणिमास्वजान्वथोरु
यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य
यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य
हृत्केशवस्वदुर ईश इनष्टु कण्ठम्
यत्तेशवस्तदुर ईश इनन्तस्तु कण्ठम्
विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम्
विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम्
चक्रयग्रत सह गदो हरिरस्तु पश्चात्
चक्रयग्रत सह गदो हरिरस्तु पश्चात्
त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च
त्वत्पाश्चर्योर्धनुरसि मधुहाजनश्च
कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्र
कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस
तार्क्ष्यक्षितो हलधरः पुरुष समन्तान्
तार्क्ष्यक्षितो हल धर पुरुष समन्तात्
इन्द्रियाणि ऋषिकेश
इन्द्रियाणि ऋषिकेश
प्राणान्नारायणोऽवतु
प्राणान्नारायणोऽवतु
श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम्
श्वेतद्वीपतिश्चित्तम्
मनो योगेश्वरोऽवतु
मनो योगेश्वरोऽवतु
वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिम्
वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धि
आत्मानं भगवान् पर
आत्मानं भगवान् पर
क्रीडन्तं पातु गोविन्द
क्रीडन्तं पातु गोविन्द
शयानं पातु माधव
शयानं पातु माधव
व्रजन्तं व्याधवैकुण्ठ
व्रजन्तं व्याधवैकुण्ठ
आसीनं त्वां श्रियः पते
आसीनं त्वां श्रियः पते
भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु
भुञ्जानं यज्ञभुक् क्यातु
सर्वग्रह भयंकर
सर्वग्रह भयंकर
दाकिन्यो यातु धानश्च
दाकिन्यो यातु धानश्च
कुष्माण्डायैर्भक ग्रहा
कुष्माण्डायैर्भक ग्रहा
भूत प्रेत पिशाचाश्च
भूत प्रेत पिशाचाश्च
यक्षरक्षो विनायका
यक्षरक्षो विनायका
कोटरारेवती ज्येष्ठा
कोटरारेवती ज्येष्ठा
उतना मातृकादय
उतना मातृकायद
उन्मादायेय पस्मारा
उन्मादायेह पस्मारा
देह प्राणेन्द्रिय द्रुह
देह प्राणेन्द्रिय द्रुह
स्वप्न द्रष्टा महोत्पाता
स्वप्न द्रष्टा महोत्पाता
वृद्धा बालग्रहाश्चये
वृद्धा बालग्रहाश्चये
सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो
सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो
नाम ग्रहण भीरव
नाम ग्रहण भीरव
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna. तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के षष्ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और भगवत कथा में भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीला जो भागवत में कही गई है, ऐसे भागवत का श्रवण पवित्र गंगा के तट पर बैठकर हम सब कर रहे हैं। पुराणों में कहा गया है, गंगा द्वारम समम तीर्थ न कैलास न समो गिरी, वासुदेव समो देवो न गंगा सिद्रशम परम, न गोदान समदानम त्रिषु लोकेषु विद्यते। इस तीनों लोकों में गाय के दान के समान और कोई दान नहीं है। गाय के दान को सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। गोकोटि दानम ग्रहणे खदस्य, गाय का दान करना बहुत पवित्र है। कहते हैं इस तीनों लोकों में गाय के दान से सबसे श्रेष्ठ दान और कोई नहीं है, और इस तीनों लोकों में कैलाश पर्वत जैसा कोई पर्वत नहीं है। जैसे इस तीनों लोकों में वासुदेव जैसा कोई देवता नहीं है, वैसे इस तीनों लोकों में गंगा जैसी कोई नदी नहीं है। नदियां तो बहुत है, गोदावरी, अलकनंदा, कावेरी, सरस्वती, यमुना, परंतु गंगा के समान कोई नदी नहीं है। इसलिए भागवत में भी कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणाम इदमस्तथा। जैसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिवजी है, जैसे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत है, जैसे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु है, वैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो वह गंगा नदी है। परम पवित्र नदी है। कुछ भक्तों का कहना है, गंगा के तट पर बैठे हैं, गंगा की महिमा सुनाइए। और श्रीमद् भागवत का गंगा के साथ बहुत लेना देना है, क्योंकि यह भागवत प्रायः गंगा के तट पर ही हुई। परीक्षित महाराज प्रथम स्कंद में कहते हैं, जब समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप लगा, 7 दिन में मरना था, अपने घर बार छोड़कर इसी गंगा के तट पर आए, और परीक्षित को श्राप लगा यह सुनकर इस जगत के अनेक ऋषि मुनि सौ शिष्यात अपने शिष्य को लेकर उस परीक्षित के पास पधारे। तब महाराज परीक्षित एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आज साक्षात यमराज भी आ जाए, काल भी आ जाए, तब भी मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्तों के बीच में बैठा हूं और गंगा के निकट खड़ा हूं, विष्णु के परम भक्त मेरे साथ है और गंगा के तट पर बैठा हूं। अब साक्षात काल भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि निश्चित है कि गंगा में स्नान करने से, गंगा के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पुराणों में वर्णन है कि यहीं पर कहीं एक सांप घूम रहा था, सर्प, और गरुड़ जी ने ऊपर से देखा कि सांप घूम रहा है, तो गरुड़ उस सांप को पकड़ लिया और पकड़कर जैसे उड़ने जा रहा था तो उस सांप की जो पूंछ थी वे गंगा के जल को स्पर्श हो गई। सांप की पूंछ गंगा के जल को स्पर्श होना और गरुड़ के द्वारा सांप का मरना, ये दोनों साथ में हुआ। पुराण में वर्णन है उस समय वह सांप चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम में चला गया। यह है गंगा का प्रभाव। सर्प योनि में था परंतु गंगा का स्पर्श करके भगवत धाम को प्राप्त किया। गंगा की बहुत महिमा है और वास्तव में गंगा का अवतरण ही हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है। बहुत सुंदर गंगा अवतरण की कथा है। आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी से दो वंश चले हैं, एक है सोमवंश वंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम च उभय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। दशम स्कंध के प्रारंभ में परीक्षित महाराज ने कहा था कि आपने सोमवंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जन्म लेने वाले एक से एक अद्भुत अद्भुत राजा महाराजाओं के चरित्र का वर्णन किया है। दो वंश चले हैं। सूर्यवंश का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी भागवत के नवम स्कंध में कहते हैं कि ब्रह्मा जी से मनु महाराज प्रकट हुए और मनु महाराज को एक दिन छींक आई और मनु महाराज के छींकने से उनके नाक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी। विकुक्षी के पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना के पुत्र हुए पृत, पृत के हुए विश्वरंधी, विश्वरंधी के चंद्र, चंद्र के पुत्र युवनाश्व, युवनाश्व के शाबस्त, शाबस्त के बृहदश्व और बृहदश्व के पुत्र हुए कुलाश्व। ये कुलाश्व 2100 भाई थे, परंतु भागवत में कथा है कि बस 2100 भाई में से केवल 100 बचे, 2000 मर गए। कुलाश्व के पुत्र हुए दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व, और इनके पुत्र हुए हरियश्व, हरियश्व के हुए निकुंभ, निकुंभ के कुशाश्व, कुशाश्व के सेनजीत और सेनजीत के पुत्र हुए युवनाश्व। यह है सूर्यवंश की परंपरा। सेनजीत के पुत्र हुए युवनाश्व। ये युवनाश्व की बहुत सुंदर कथा भागवत में है। यद्यपि ये सब की कथा है परंतु जिसका चरित्र अद्भुत है उनका मैं आपको सुना रहा हूं। तो इस प्रकार हरियश्व के निकुंभ, निकुंभ के कुशाश्व, कुशाश्व के सेनजीत, सेनजीत के हुए युवनाश्व। यह युवनाश्व ने विवाह किया परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन की बात, युवनाश्व और उनकी पत्नी जंगल में गए थे और ऋषि मुनियों को कहे कि आप ऐसा यज्ञ करो जिससे हमें संतान उत्पन्न हो। तो यह युवनाश्व और उनकी पत्नी यज्ञ कुंड के बाजू में बैठे, ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे। आप सब जानते हो यज्ञ में बहुत आग का प्रकाश और ताप होता है। एक तो सूर्य की गर्मी थी और यज्ञ के अग्नि की गर्मी। यज्ञ शुरू था और युनाश्व को प्यास लगी। युनाश्व और उनकी पत्नी कुछ देर के लिए खड़े होकर यज्ञ से दूर हुए। ऋषि मुनियों का यज्ञ शुरू था और उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए। क्षमा कीजिए, वहां पर एक घड़ा था और उस घड़े में जल था और उस यज्ञ के द्वारा उस घड़े के जल में मंत्र वीत किया गया और वह घड़े का जल यदि कोई पान करे तो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो यज्ञ से वह अभिमंत्रित जल प्रकट हुआ, परंतु युनाश्व और उनकी पत्नी विचरण करने के लिए गए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि जब ये आएंगे तब हम इसे ये जल दे देंगे। ये सोचकर वह जल का घड़ा वहीं पर यज्ञ कुंड के पास रख दिया और ब्राह्मण अपने काम करने के लिए चले गए। युवनाश्व और उनकी पत्नी कुछ देर के बाद घूमते घूमते आए। युवनाश्व को बहुत प्यास लगी और देखा कि यहां पर पानी का घड़ा पड़ा है, लेकर तुरंत पी लिया। यद्यपि वह पानी उसकी पत्नी को पीना था क्योंकि उस पानी में अभिमंत्रित जल था, मंत्र विहित था। ऋषि मुनि आए और अफसोस करने लगे कि इस जल में हमने ऐसे मंत्र पढ़े हैं जिसे संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन मंत्र कभी विफल नहीं जा सकता है। अब देखिए, वह जल युनाश्व ने पिया तो वह युनाश्व के गर्भ में एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे भारत के इतिहास में यह प्रथम घटना कि एक पुरुष के गर्भ में बालक उत्पन्न हुआ, ये मंत्र का प्रभाव। और धीरे धीरे करके कुछ महीने बीते और कुछ महीनों के बाद ऑपरेशन करके पेट को काटकर उस बालक को निकाला गया। ये सीजरिंग जो है आजकल से नहीं है, बहुत वर्षों से यह चलता आ रहा है। बालक तो निकल गया, परंतु संसार में जब किसी मां के गर्भ से बालक का जन्म होता है तो मां के स्तन से स्वाभाविक दूध छूने लगता है, परंतु ये तो बाप था, ये तो पुरुष था। अब इसे दूध कौन पिलाए? तब वहां पर प्रश्न उठा कि इस बालक को दूध कौन पिलाएगा, इसका दाता कौन बनेगा। तो उस बालक को तेजस्वी देखकर इंद्र स्वर्ग से आए, कहा माम धाता, इसका दाता मैं बनूंगा। तब इंद्र ने उस बालक को लिया। इंद्र की उंगली में अमृत का स्त्रव होता है। इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुंह में रख ली और अमृत का पान किया। वह बालक एक मिनट में 16 साल का बालक हो गया अमृत पान करके। इस प्रकार अद्भुत अद्भुत चरित्र सूर्य वंश के। और क्योंकि इंद्र ने कहा था माम धाता, इसका धाता मैं बनूंगा, इसलिए युनाश्व के उस पुत्र का नाम ही हो गया मान धाता। युनाश्व के पुत्र हुए मान धाता और इस मान धाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स, और इसके साथ इस मान धाता की 50 कन्या थी। ये भी भागवत में एक कथा है। मान धाता की 50 कन्या थी और उसका विवाह शौबरी ऋषि के साथ हुआ। शौबरी नाम के ऋषि थे और तपस्या करना चाहते थे। सोचा कि संसार में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत लोग डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए यह सोचकर वे शौबरी ऋषि पानी के भीतर चले गए। पानी की बिल्कुल गहराई में जाकर जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां जाकर शौबरी मुनि ने तपस्या प्रारंभ की। 1 साल 2 साल 1000 2000 शौबरी मुनि तपस्या करते करते 60,000 वर्ष बीत गए। देखिए अद्भुत अद्भुत तपस्या। परंतु 60,000 वर्ष बीते और उस समय शौबरी मुनि जल में थे और जल में शौबरी मुनि ने एक दिन मछली का मैथुन देख लिया। अब आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे परंतु खुल गई होगी। मछली का मैथुन देख लिया शौबरी मुनि के मन में हुआ, मैं खामखा यहां पर तपस्या करके मर रहा हूं, वास्तविक आनंद तो ये मछली ले रही है। शौबरी के हृदय में काम उत्पन्न हुआ और विवाह करने की इच्छा हुई। देखिए हमारे भागवत में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। कितनी भी लंबी तपस्या की जाए, कितनी भी कड़ी तपस्या की जाए, तपस्या के द्वारा इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। इंद्रियों को वश में करना है तो भक्ति करनी चाहिए, भजन के द्वारा इंद्रियां वश में होती हैं। आपने देखा हरिदास ठाकुर मात्र भगवान का नाम जपते थे परंतु साक्षात माया देवी वेश्या भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये 60,000 वर्ष तक तपस्या किए परंतु उस मछली के मैथुन से आसक्त हो गए, नदी से बाहर निकले। और उस समय शौबरी ऋषि को पता था कि मानदाता की बहुत सुंदर 50 कन्या है, तो युवनाश्व के पुत्र मानदाता के घर पर महल में आए, राजा थे, और मानदाता को कहा कि मुझे आपकी पुत्री के साथ विवाह करना है। अबे शौबरी ऋषि लंबी लंबी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे और शरीर बिल्कुल तपस्या करके सूख गया था, और कांपते कांपते बोल रहे थे आपकी एक पुत्री के साथ विवाह करना है। मानदाता राजा थे और 50 सुंदर कन्या थी। अब एक पिता ऐसे बूढ़े के साथ अपना विवाह कैसे कराए। अब मानदाता ने सोचा कि यदि ना कह दूंगा तो ये श्राप दे देंगे, और यदि हाँ कह दूंगा तो मेरी बेटी दुखी हो जाएगी, बेचारे धर्म संकट में फंस गए। शौबरी ने कहा सोच क्या रहे हो, बोलो जल्दी। तब मानदाता ने कह दिया देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि मेरी पुत्री ही आपके साथ विवाह करने के लिए राजी हो तो आप विवाह कर सकते हैं। तब शौबरी ऋषि समझ गए कि ये मेरे रूप को देख रहा है। वास्तव में अपनी कन्या का विवाह करने के लिए मात्र रूप ही नहीं देखना चाहिए। अब देखिए शौबरी ने देखा कि मेरे रूप को देख रहा है, उसी समय शौबरी ऋषि अपने तपोबल से इतना सुंदर रूप बनाए, इतना सुंदर रूप बनाए। दूसरे दिन मानदाता ने अपनी 50 कन्या को खड़ा रखा और शौबरी आए शूट बूट टाई भाई पहनकर, और मानदाता ने अपनी कन्याओं को कहा कि आप में से किसको शौबरी के साथ विवाह करना है। 50 कन्या ने हाथ ऊपर किया, मैं विवाह करूंगी। शौबरी ने कहा चलो 50 को हमारे घर भेज दो, 50 के साथ विवाह कर लिया। भक्त बहुत सुंदर शिक्षा है, कभी भी किसी के शरीर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषे, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बहुत सुंदर बात कहते हैं, कभी भी किसी वैष्णव के शरीर के दोष को नहीं देखना चाहिए। गंगा बसाम खलु बुध बुध फैन पके, वे दृष्टांत देते हैं जैसे गंगा का जल यदि किसी मिट्टी में पड़ गया हो और मिट्टी के द्वारा धूलित हो गया हो फिर भी वह जल पवित्र है, वैसे ही भक्त का शरीर यदि कुरूप भी हो फिर भी वह पवित्र है। कभी भी दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषे, कभी भी किसी के शरीर को देखकर, शरीर को लेकर दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल, आत्मा है, आत्मा को देखना चाहिए। परंतु दुख की बात है कि संसार में लोग मात्र चमड़े को देखते हैं, ये चमड़ा गोरा है अच्छा है। एक बार राजा जनक की सभा में अष्टावक्र ऋषि पधारे, आपने सुना होगा हमारे इतिहास में एक ऋषि मुनि हुए अष्टावक्र ऋषि, उनका नाम अष्टावक्र इसलिए हुआ क्योंकि वे आठों अंग से टेढ़े थे और अष्टावक्र ऋषि के कुरूप को देखकर राजा जनक की सभा में जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे सब लोग हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे उसे देखकर। अष्टावक्र ऋषि उससे दो गुना हंसने लगे ठठाकर। तब राजा महाराजा ने अष्टावक्र ऋषि को प्रश्न पूछा कि देखो हम तो आपके रूप को देखकर हंस रहे हैं परंतु आप क्यों हंस रहे हैं? तब अष्टावक्र ऋषि ने इतना ही कहा कि मैंने सुना था कि इस सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे हैं, मुझे ऐसा लगा था कि इस सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा क्षत्रिय आए हैं परंतु यहां आकर देखा तो सब लोग मोची आकर बैठे हैं, सब लोग चमार बैठे हैं क्योंकि मात्र चमड़े को देख रहे हैं, इस चमड़े के अंदर रही हुई आत्मा को नहीं देख रहे हैं। केवल शरीर को देखना, दैहिक लेवल को शारीरिक लेवल पर रहना ये तो चमार का काम, शूद्र का काम है। हमें आत्मा के स्तर पर रहना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के गुण को देखना चाहिए। खैर जो भी हो, मानदाता की 50 कन्या के साथ शोभरी ऋषि ने विवाह किया और मानदाता का एक पुत्र जिसका नाम पुरुकुत्स था, पुरुकुत्स के पुत्र हुए त्रशदस्यु, त्रशदस्यु के पुत्र हुए अनर्यण, अनर्यण के पुत्र हुए हरियश्व, हरियश्व के अरुण, अरुण के पुत्र हुए निबंध और निबंध के पुत्र हुए त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु की भी अद्भुत कथा है। ये त्रिशंकु एक बार अपने गुरु विश्वामित्र के पास आए और कहे विश्वामित्र जी मुझे स्वर्ग में जाना है। विश्वामित्र ने करा यज्ञ, कहा यज्ञ करो स्वर्ग में चले जाओगे। कहा ऐसे नहीं, बिना मेहनत के आप मुझे स्वर्ग में भेज दो। तब विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर ये त्रिशंकु राजा को स्वर्ग में भेजा, परंतु स्वर्ग के देवताओं ने मीटिंग की कि ये बिना तपस्या किए बिना यज्ञ किए स्वर्ग में आ रहा है, इसको आने नहीं देना है। तो वे लोग अपना बल लगा के त्रिशंकु को नीचे भेजने का प्रयास, ये मंत्र के बल से त्रिशंकु राजा को ऊपर भेजने का प्रयास, देवतागण अपने मंत्र के बल से त्रिशंकु को नीचे। ये राजा त्रिशंकु न तो नीचे न तो ऊपर जा पाए न नीचे आ पाए, बीच में लटक गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आज भी आकाश में लटक रहे हैं। इस राजा त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, आप सब जानते हैं हरिश्चंद्र का इतिहास। हरिश्चंद्र का जब नाम आता है तो कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। स्वप्न में उन्होंने ये सारी पृथ्वी विश्वामित्र को दान में दे दी थी, ये स्वप्न आया था। परंतु राजा हरिश्चंद्र ऐसे दानी थे, स्वप्न में दान दे दिया तो देना है। विश्वामित्र घर पर आए और हाथ में जल लेकर संकल्प किया, विश्वामित्र जी कल मुझे स्वप्न आया था कि मैंने ये सारी पृथ्वी आपको दान में दे दी है। देखिए स्वप्न में भी दिया गया दान वास्तव में देना चाहिए। और दूसरे दिन विश्वामित्र को बुलाकर दे दिया दान। तब विश्वामित्र जी शौभरी ऋषि को, हरिश्चंद्र जी को कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी आपने दान तो दिया परंतु दक्षिणा नहीं हुई। देखिए दान की जितनी महिमा है उतनी दक्षिणा की भी महिमा है। आप अपने घर पे ब्राह्मणों को बुलाओ, कितना भी भोजन कराओ, कितने भी प्रशंसा करो, चरण धो, परंतु जब तक जेब में 101 रुपये नहीं डालोगे तब तक खुश नहीं रहेंगे। जितनी दान की महिमा है उतनी दक्षिणा की महिमा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन आपने दान तो बहुत सुंदर किया है परंतु दक्षिणा नहीं हुई। हरिश्चंद्र जी ने कहा बोलो क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? कहा राजन ज्यादा नहीं केवल 10 सोना मोहर चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने ताली बजाई, सैनिक आए, कहा कि हमारे धन के खजाने में से 10 नहीं, इस विश्वामित्र को 100 सोना मोहर दे दो। विश्वामित्र ने राजा को सतर्क किया, राजन मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं और अवगत कर रहा हूं कि आपने सारी पृथ्वी मुझे दान में दे दी है और आप उसी पृथ्वी से सोना मोहर मुझे देने जा रहे हो, तो क्या यह सोना मोहर पृथ्वी के बाहर की चीज है? राजन यदि दक्षिणा देनी है तो पृथ्वी से बाहर निकलो और फिर दक्षिणा लेकर आओ। देखिए भक्तों की जीवन में भी परीक्षा आती, और उस समय राजा हरिश्चंद्र जानते थे कि वाराणसी, ये जो काशी नामक धाम है, इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसा है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को लेकर, एक दिन का सम्राट अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते से काशी नामक क्षेत्र में आए और काशी की भरी बाजार में राजा हरिश्चंद्र अपने दोनों हाथ फैलाकर काशी के वासियों को कहते थे कि हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, आप लोग मुझे खरीद लो, हम बिकने के लिए तैयार हैं। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, स्वयं शमशान में आग लगाने वाले डोम के हाथ में बिक गए और जो धन आया उस धन से विश्वामित्र को दक्षिणा दे। देखिए हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, भक्त को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ देकर वे स्वयं बिक गए हैं। सूर्य वंश में ऐसे राजा हुए। एक मालिन के वहां वो पत्नी और पुत्र को बेच दिया और स्वयं शमशान में नौकरी करने लगे। एक दिन की बात, उस बगीचे में फूल तोड़ते तोड़ते उस हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सर्प डस लिया और उस समय उस पुत्र को शमशान में ले जाने वाला कोई नहीं था। वह दुखी मां तारामती अपने पुत्र रोहित को लेकर शमशान में आई और हरिश्चंद्र ड्यूटी पर थे। आप देखिए कितने कर्मवादी थे, कितने सत्यवादी थे। वह शमशान के मालिक ने कहा था बिना पैसे लिए इस शमशान में किसी को आने मत देना। राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया आप अंदर नहीं आ सकती हो। तारामती रोते हुए कहती हैं, आपको दया नहीं आ रही है, ये आपके पुत्र के प्राण निकल गए हैं, मर गए हैं और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा बिना पैसे लिए मैं आपको चिता पर नहीं सुलाने दूंगा। तब तारामती ने कहा कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अरे पैसे उससे मांगे जाते हैं जिसके पास कुछ हो। लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य से अड़ग नहीं हुए, कहा नहीं, कहा मेरे पास क्या है? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा था आपने ये साड़ी तो पहनी है, दे दो उतार कर, एक वस्त्र, केवल एक साड़ी पहनी थी और उस समय अपने पुत्र को अंतिम संस्कार करने के लिए वह तारामती अपने पति को, जैसे ही वह तारामती अपने शरीर से साड़ी निकालने जा रही है हरिश्चंद्र को देने के लिए, तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। बस राजन, बस आपकी परीक्षा हो गई। विश्वामित्र प्रकट हुए, राजा की जीत हुई। ऐसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, अपने सत्य पर अड़ग। फिर आगे चलकर विश्वामित्र ने फिर से उसे राजा बना दिया, फिर से वे राजा हो गए। तो इस प्रकार सूर्य वंश में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं का चरित्र। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजयी, विजयी के भरूक, भरूक के वृक और वृक के पुत्र हुए बाहुक। राजा बाहुक की भी बहुत सुंदर कथा है। राजा बाहुक की अनेक पत्नियां थी, सैकड़ों पत्नी, और उनमें से एक पत्नी गर्भवती थी। एक दिन की बात, राजा बाहुक युद्ध करने के लिए गए और उस युद्ध करते करते राजा बाहुक की मृत्यु हो गई और उस सैकड़ों पत्नियों में से एक पत्नी के गर्भ में राजा बाहुक का पुत्र पल रहा था। तब अन्य पत्नियों ने मीटिंग की कि देखो, हमारी सोत के गर्भ में बालक है, कुछ दिन के बाद उस बालक का जन्म होगा तो उस बालक को राजा बनाया जाएगा और वो बालक राजा बनेगा तो उसकी मां राजमाता बन जाएगी और हम सब दूध की मक्खी हो जाएगी, हमें कोई पूछेगा भी नहीं। क्या किया जाए? तो स्त्रियों को बुद्धि तो होती नहीं है और उसमें भी जब एक साथ बहुत सारी स्त्रियां होती हैं तब तो थोड़ी बहुत होती हैं वह भी चली जाती है। सब लोग ने निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, उस बालक को जहर खाकर खिलाकर मरवा देते हैं। तो वह गर्भवती थी, वो तो बेचारी आराम में थी, भोजन में विष मिलाया और विष वाला भोजन उस बाहुक की गर्भवती पत्नी को खिला दिया। बिचारी ने भोजन कर लिया, परंतु भगवान का प्रभाव देखिए, गर्भ में वह बालक को जहर वाला भोजन डाला गया परंतु वह बालक उस जहर को खाया नहीं, जितना भी उसमें जहर था उस जहर को हाथ में धारण किया और उस जहर को हाथ में धारण करके गर्भ से प्रकट हुआ। भक्तों, जहर को संस्कृत में गर कहा जाता है और यह बालक गर के साथ प्रकट हुआ इसलिए इसका नाम हुआ सगर। पर आगे चलकर यह राजा बने। राजा सगर का अद्भुत इतिहास, राजा सगर की दो पत्नी थी, सुमति और केशिनी। राजा सगर ने अपनी सुमति नाम की पत्नी से 60,000 पुत्र को जन्म दिया। ये 60,000 पुत्र अद्भुत। राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, आप सब जानते होंगे, यदि कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेते हैं तो वह इंद्र के आसन के ऊपर बैठने के योग्य हो जाते हैं, स्वर्ग के राजा बन जाते हैं। 99 अश्वमेघ यज्ञ समाप्त हुए और अंतिम 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था, इंद्र को पता चला कि यदि यह अश्वमेघ यज्ञ हो गया तो मेरी कुर्सी जो है संकट में पड़ जाएगी। एक कुर्सी के कारण बहुत झगड़े होते हैं, आज भी हमारे दिल्ली में संसद में सारा झगड़ा है, ये आतंक इत्यादि कुर्सी के कारण। राजा सगर ने यह अंतिम अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा था। अश्वमेघ यज्ञ का यह नियम होता है, एक घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़ा पूरी दुनिया में घूमता है। जिस राजा को इस राजा के साथ कुछ तकलीफ है और अश्वमेघ यज्ञ नहीं करने देना है तो उस घोड़ा को चुरा लेते हैं। फिर ये राजा जिसको अश्वमेघ यज्ञ करना होता है वे जाते हैं और जिसने चुराया है उसके साथ युद्ध करते हैं, उसको हरा कर, ऐसे पूरी दुनिया को जब हरा देते हैं तब वह अश्वमेघ यज्ञ कर सकते हैं। राजा सगर ने घोड़ा छोड़ा, इंद्र को पता चला यदि ये घोड़ा पूरी दुनिया में घूम लिया 100वां अश्वमेघ यज्ञ हो जाएगा, इसलिए इंद्र उस घोड़े को चुराकर गंगा सागर में भगवान कपिल देव के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर ने देखा कि बहुत दिन बीत गए परंतु वह अश्व वह घोड़ा वापस नहीं आया। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, जाओ और कैसी भी करके उस घोड़े को ढूंढ कर लाओ। ये 60,000 पुत्र गए, घोड़ा मिला नहीं, सोचा पाताल में होगा, ये पृथ्वी को खोदने लगे और पृथ्वी में इतना बड़ा खड्डा कर दिया, आगे चलकर इस सगर के पुत्रों के द्वारा जो खड्डा हुआ उसमें पानी भरा और जब पानी भरा तो उसका नाम हुआ सागर। ये जो हम सागर देख रहे हैं ना, ये सागर का निर्माण और किसी ने नहीं, ये सगर के पुत्र ने किया है। सगर के 60,000 पुत्र ने इसका निर्माण किया इसलिए इसका नाम हुआ सागर। और घूमते घूमते गंगा सागर पहुंचे, वहां देखा कि वह घोड़ा उस कुटिया में बंधा हुआ था। अंदर देखे तो भगवान कपिल देव भजन कर रहे थे। 60,000 पुत्र के मन में हुआ कि ये साधु होकर घोड़ा क्यों चुरा रहा है। भगवान कपिल देव के प्रति अपराध हुआ और अपराध होते ही वह 60,000 पुत्र जगह पर वहीं पर जलकर भस्म हो गए, राख हो गए, एक भक्त का अपराध करने से। और राजा सगर को पता चला कि मेरे 60,000 पुत्र कमौत हो गया, अवगति पर गए हैं। तब अपने पुत्र का उद्धार करने के लिए राजा सगर ने बहुत कोशिश की, परंतु हुआ नहीं। तब राजा सगर की दूसरी पत्नी केशिनी का एक पुत्र था असमंजस। असमंजस ने भी बहुत प्रयास किया अपने भाइयों का उद्धार करने के लिए, परंतु नहीं कर सके। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अपने दादाओं का उद्धार करने के लिए यह अंशुमान घूमते घूमते भगवान कपिल देव के आश्रम में गया और कहा कि आप ही रास्ता बताइए कि हमारे 60,000 दादाओं का उद्धार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सगर के 60,000 पुत्र का उद्धार करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तब भगवान कपिल देव ने कहा, अपराध के कारण ये लोग जलकर भस्म हुए हैं। यदि ये 60,000 पुत्र की अस्थि जानते ना, मरने के बाद उस शरीर को जलने के बाद जो राख बचती है अस्थि कहा जाता है, यदि उसकी अस्थि को, उसके अवशेष को गंगा में डाला जाए, गंगा में बहाया जाए, तब 60,000 पुत्र का उद्धार हो सकता है। तब अंशुमान ये बात सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु दुख इस बात का था कि उस दिन उस समय गंगा इस पृथ्वी पर नहीं थी। उन दिनों यह गंगा ब्रह्मलोक तक आ चुकी थी। वास्तव में यह गंगा का जल और कुछ नहीं, इस भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के बीच में जो कारण समुद्र है, विरजा नदी है, उस विरजा नदी का जल जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो उन दिनों गंगा ब्रह्मलोक तक थी। भगवान वामन ने जब एक कदम से पृथ्वी के नीचे के लोगों को नापा, दूसरे कदम से पृथ्वी के ऊपर के लोगों को नापा, जब अपने कदम से ऊपर के लोगों को नाप रहे थे तो अपने चरण के अंगूठे से इस ब्रह्मांड का कवर टूट गया और उस छिद्र से वो कारण समुद्र का जल नीचे आया। 14 लोक में सबसे ऊपर का लोक ब्रह्म लोक है। ब्रह्म लोक में वह जल आया, ब्रह्मा जी ने उस जल को कमंडल में धारण कर लिया। गंगा पृथ्वी पर नहीं थी, ब्रह्म लोक में थी। और गंगा को ब्रह्म लोक से पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान ने बहुत प्रयास किया परंतु नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप। यह दिलीप ने भी बहुत तपस्या की गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, परंतु राजा दिलीप भी गंगा को इस पृथ्वी पर नहीं ला सके। तब राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। राजा भगीरथ एक परम प्रतापी सर्वगुण संपन्न राजा और बहुत सुंदर तपस्या की और तपस्या से गंगा देवी को प्रकट किया और गंगा को प्रकट करके कहा कि हे देवी, हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए और इस जगत में रहने वाले जीवों का उद्धार करने के लिए कृपया करके आप ब्रह्म लोक से इस पृथ्वी लोक में आइए। तब गंगा ने कहा, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कोऽपि धारिता वेगम पतन्या मे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृप यासी रसातलम। कोऽपि धारिता वेगम, मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आऊंगी, परंतु कौन मेरे इस वेग को धारण करेगा। क्योंकि आप देखिए, 15-20 माले से भी पानी गिरता है तो इसका वेग कितना होता है, और ये तो ब्रह्म लोक से पृथ्वी लोक में जल को गिरना बहुत वेग होगा। ये कहती गंगा जी ने कहा कि यदि ब्रह्मलोक से मैं पृथ्वी लोक में गिरूंगी और यदि मुझे धारण करने वाला कोई नहीं रहेगा तो अन्यथा भूतलम भीतवा, इस भूतल को भीतवा, इस भूतल को, इस पृथ्वी को तोड़कर फोड़कर नृप आसी रसातलम, मैं रसातल में चली जाऊंगी। इसलिए पहली शर्त तो यह है कि आप मेरे वेग को रोकिए। तो भगीरथ जी सोचने लगे अब क्या किया जाए। उस समय राजा भगीरथ को शिव जी की याद आई। भगवान भोलेनाथ शिव जी के पास भगीरथ जी गए और कहा, प्रभु गंगा पृथ्वी पर आना चाहती है परंतु उसके वेग को रोकने के लिए कुछ करना होगा। भगवान शिव तो जानते थे गंगा की महिमा, जो जल भगवान के चरणों से स्पर्श होकर निकला है। शिव जी ने मन में सोचा कि जिस भगवान के चरण को मैं हृदय में ध्यान करता हूं उस भगवान के चरणों का चरणोदक यहां पर आ रहा है, तब तो मैं धारण करूंगा निश्चित। भगीरथ जी आप कह दो गंगा को कि ब्रह्म लोक से निकले और निकलकर डायरेक्ट कैलाश में इस शिव जी की जटा पर आए। उस गंगा के वेग को मेरी जटा पर गिराओ, मैं उसके वेग को रोक दूंगा। शिवजी ने अपनी जटा में गंगा के वेग को धारण करने के लिए कह दिया। भगीरथ जी फिर से गंगा के पास गए। गंगा ने कहा, ठीक है एक शर्त तो मेरी पूर्ण हुई, अब दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? कि चाहम न भोम यास्य नरा मत्या मृजन्यघम मृजापि तद अघम कुत्र राजम तत्र विचिन्तयाम। हे राजन, हे भगीरथ जी, मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक में आऊंगी और जब मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगी तो पृथ्वी के हजारों लाखों करोड़ों पापी मुझ में स्नान करेंगे और अपना सारा पाप छोड़कर चले जाएंगे। तो इस प्रकार पापी आ आकर स्नान करेंगे और पाप को छोड़कर चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा मैं पाप से भर जाऊंगी, तब मेरे पाप को दूर करने वाला कौन होगा? तब राजा भगीरथ अंततः तो भगवान के भक्त थे, कहा, गंगे देवी आप डरो मत, साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरण्यगम ते संगात देशास्त्वे हय गभीर दिल। आप डरिए मत, क्योंकि ये सही है कि पापी लोग आप में आएंगे, पाप छोड़कर चले जाएंगे, परंतु कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी आप में स्नान करेंगे। और जब वैष्णव विष्णु के जन भक्त आप में स्नान करेंगे तो आप में जितना भी पाप है वह सारा पाप वैष्णव हर लेंगे। देखिए गंगा से भी पवित्र भगवान के भक्त होते, भगवान के भक्त गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा के पाप को भी नष्ट कर देते हैं। भक्तों की बहुत महिमा है। भगवान के भक्त किसी को देख ले तो जिसको देखते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा दिन के हनाई, ए बार करुणा करो वैष्णव हे वैष्णव जन, हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वैष्णव, हे भक्तो, आप हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि इस संसार में पतितों का उद्धार करने वाले, पापियों का उद्धार करने वाले एकमात्र वैष्णव ही है। अब देखिए इस संसार में इतिहास खोलकर देख लीजिए, जितने भी पतित लोग हैं वैसे पतितों का उद्धार मात्र वैष्णव ने किया है। चाहे नल कुबेर और मणिग्रीव कितने पापी थे, परंतु नारद जी ने उद्धार कर दिया, रत्नाकर का उद्धार किया, अनेक पापियों का उद्धार वैष्णव के द्वारा होता है। जो कार्य भगवान नहीं कर सकते हैं भगवान के भक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वेद शास्त्र की रचना किए परंतु लोग भक्त नहीं बने, तब भगवान ने सोचा मुझे जाना होगा। साक्षात कृष्ण के रूप में आए, अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता का ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी सब लोग भक्ति नहीं कर रहे। परंतु फिर वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और कुछ लोगों को भक्त बनाकर चले गए, परंतु पूरी दुनिया को भक्त नहीं बना सके। लेकिन उसी कृष्ण का एक भक्त अभय चरण, कैसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी आए। जो कार्य भगवान ने नहीं किया वह कार्य प्रभुपाद जी ने कर दिया। जो कार्य भगवान नहीं कर सकते हैं वह भक्त कर दिया। नहीं तो भगवान ने तो गीता में कह के चले गए कि यह गीता का ज्ञान किसी अभक्त को पापी को मत सुनाना, मत भक्तेशो विदास्यति, भक्त को ही सुनाना। परंतु प्रभुपाद जैसे संत पापी तापी 2400 घंटा नशे में रत रहने वाले को भी यह गीता और भागवत का ज्ञान देकर शुद्ध वैष्णव बना दिए। ये है भक्तों की महिमा। बहुत सुंदर कहावत है कि पारस पारस और संत में बड़ो अंतर जान। कभी कभी कुछ लोग संतों की उपमा पारस मणि के साथ देते हैं। पारस मणि लोहे के साथ यदि घिसा जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है। भक्त को पारस कहा गया है, परंतु एक कवि कहते हैं नहीं नहीं, भक्त पारस नहीं, पारस से भी उत्तम है, क्योंकि पारस मणि लोहे को मात्र सोना बना सकती है। पारस लोहे को कंचन करे, संत करे आप समान। पारस मणि लोहे को पारस नहीं बना सकती है, पारस मणि लोहे को मात्र सोना बना सकती है, परंतु संत कितने भी बड़े पापी को अपने जैसा संत बना देते हैं। यह है संत की कृपा।
बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम दिन के हनाई। ए बार करुणा करो,
सभी लोग प्रेम से गाइए,
जहार निकटे गेले पाप दूर जाय, निकटे गेले पाप दूर जाय।
बताइए वैष्णव से दयालु कौन हो सकते हैं, जिसके निकट जाने से, जिसके बाजू में बैठने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है।
जहार निकटे गेले पाप दूर जाय, मन दयाल प्रभु के बाको था पाया,
हे मन दयाल प्रभु के बको तपाया
गंगा र परश होइले पश्चाते पावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि गंगा का स्पर्श होने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु वैष्णव का मात्र दर्शन कर लीजिए हृदय में पवित्रता आ जाती है। गंगा र परश होइले पश्चात पावन दशने पवित्र करो ए तुमार गुण
दशने पवित्र करो ए तुमार गुण
हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम ठाकुर कह रहे हैं हरि स्थाने अपराधे यदि हमसे हरि का अपराध हो गया तो हरि का नाम लेने से वह हरि के भगवान के अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं, परंतु यदि भूल से भी वैष्णव का अपराध हो गया तो इस संसार में कोई वैष्णव अपराध से हमें मुक्त नहीं करा सकता।
हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम
हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम
तुम स्थाने अपराधे नाही कई हान
तुमार
हृदय सदा गोविंद विश्राम
वैष्णव के हृदय में भगवान गोविंद होते हैं, भगवान का स्थान वैष्णव के हृदय में होता है और गोविंद भगवान कहते हैं कि वैष्णव मेरे हृदय में रहते हैं।
प्रार्थना
करता हूँ एक नहीं हजार जन्म मिले, परंतु प्रत्येक जन्म में वैष्णव के चरणों के का रज प्राप्त हो, वैष्णव के चरणों की धूल प्राप्त हो, यही मेरी आपसे कामना है।
प्रति जन्म कोरी आशा चरणे रधूली, नरोत्तम करो दया अपनार बनी, नरोत्तम करो दया अपनार बनी, नरोत्तम करो दया अपनार बनी, नरोत्तम बार करो ना करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के नाई, हे बार वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, 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 वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर,
वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर,
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
तो इस प्रकार राजा भगीरथ जी ने श्रीमती गंगा जी को आश्वासन दिया कि वैष्णव लोग आएंगे, आप में स्नान करेंगे, आपके पाप को दूर करेंगे, और उस दिन से लेकर आज तक गंगा कारण समुद्र से ब्रह्मा जी के कमंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव जी की जटा में, शिव जी की जटा से गंगोत्री और गंगोत्री से हरिद्वार होकर प्रयाग होकर इस भारत को पवित्र करते हुए गंगा सागर में जाती हैं। तो ये है गंगा का उतरण और ये है गंगा की महिमा। इस गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे गंगा के पवित्र तट पर हम सब भागवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा के दसम स्कंद के छठे अध्याय में पूतना वध की कथा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, पूतना की लाश गिरी हुई है। सभी गोपियों ने मिलकर कृष्ण को पूतना की लाश से उठा लिया। और तत्पश्चात यशोदा और रोहिणी के पास जाकर कृष्ण को प्रदान किया। यशोदा और रोहिणी ने कृष्ण की रक्षा करने के लिए अनेक उपाय किए, अनेक उपायों से कृष्ण की रक्षा किए, और कृष्ण की रक्षा करते करते अब कहते हैं आर्ष ऋषि द्वारा प्रदत्त संस्कार कर रही है। बड़े बड़े ऋषियों ने अपने बालकों की रक्षा करने के लिए जो संस्कार बनाए हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं, उनमें से एक प्रकार का संस्कार अपने बालकों की रक्षा करने के लिए होता है। तो ऐसे संस्कार अब यशोदा और रोहिणी कर रहे हैं। आइए 20वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं।
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षां चक्रुशक्रीता द्वादशांगेषु नामभिः।
सुदेव गोस्वामी कहते हैं कि अवर्कम, उस बालक को गोमूत्रेण स्नापयित्वा, उस बालक को, इस श्लोक में भी कृष्ण को बालक ही कह रहे हैं, उस बालक कृष्ण को गोमूत्रेण, गोमूत्र के द्वारा स्नापयित्वा स्नान कराया गया। देखिए गोमूत्र जो है बहुत पवित्र माना जाता है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र के द्वारा बालक कृष्ण को स्नान कराया गया। गोमूत्र बहुत पवित्र माना जाता है, और इसी के साथ साथ साइंटिफिकल रीजन ये है कि गोमूत्र में एंटीसेप्टिक तत्व होते हैं, गोमूत्र को एंटीसेप्टिक माना गया है। यदि शरीर पर कोई भी घाव लगा हो और उस घाव पर गोमूत्र लगाया जाता है तो वह घाव ठीक हो जाता है। तो यशोदा और देवकी ने सोचा कि शायद पूतना को दौड़ने में, गिरने में कृष्ण को घाव लग गया हो, तो इसलिए गोमूत्र के द्वारा कृष्ण को स्नान कराया गया। पुनः गो रजसार्भकम, और गोमूत्र से स्नान कराने के बाद गो रजसा का अर्थ होता है गाय के खुर के द्वारा खोदी गई मट्टी। गाय जब चलती है और कभी कभी खड़े खड़े अपने खुर से, अपने चरण से मिट्टी को खोदती रहती है, तो गाय के खुर द्वारा खोदी गई जो रज है वह बहुत पवित्र मानी जाती है। कृष्ण के शरीर पर वह रज लगाई गई। रक्षाम चक्रुश्च शक्रिता द्वादश अंगेशु नाम भी, और फिर यशोदा और रोहिणी जी कृष्ण की रक्षा करने लगी। कैसे? तो कहते हैं द्वादश अंगेशु। द्वादश अंगेशु का अर्थ होता है, वंशीधर जी कहते हैं द्वादश तिलक स्थानेशु। ये द्वादश जो तिलक के स्थान है, उस तिलक के स्थान पर उस मिट्टी को लगाया गया। और कैसे लगाते थे? कहते नाम भी। श्लोक के अंत में एक शब्द आया है नाम भी। भगवान का नाम लेकर शरीर के 12 जगह पर वो मट्टी लगा रहे थे। मन में प्रश्न हो सकता है, तो उस समय कृष्ण को ये द्वादश तिलक करते हुए मिट्टी क्यों लगाया गया, गोपी चंदन क्यों नहीं लगाया? हो सकता है क्योंकि हम लोग तो द्वादश तिलक के समय गोपी चंदन लगाते हैं, तो वहां पर कृष्ण को गोपी चंदन क्यों नहीं लगाया? भक्तों, ये गोपी चंदन जब भगवान कृष्ण चले गए तब बना। गोपी चंदन की कथा आप जानते हैं, कृष्ण के विरह में भगवान की महिषिया उस गोपी तालाब में गिरकर आत्महत्या कर ली, और ये गोपी चंदन और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी गोपियों के देह है, वह देह ही मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। तो गोपी चंदन तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए उसके बाद निर्माण हुआ, इसलिए गाय के खुर से जो खोदी गई मट्टी है उस मट्टी को द्वादश तिलक के रूप में लगा रहे हैं। देखिए तिलक की बहुत महिमा है, तिलक एक नहीं बारह होते हैं। यहां पर कहते हैं नाम भी, नाम भी, नाम ले लेकर तिलक लगा रहे थे। वैसे भगवान के तो करोड़ों नाम है, हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। तो कहते हैं नाम भी कौन से नाम, तो कहते हैं केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर इति। ये बारह नामों के द्वारा, जैसे हम तिलक करते हैं तो ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, इत्यादि अनेक भगवान के बारह नाम लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान की रक्षा करने के लिए, देखिए एक शब्द आया रक्षाम चक्रु, रक्षा करने के लिए क्या किया, द्वादश अंगेशु नाम भी, अपने द्वादश ये अंगों पर तिलक किया गया। इसे बहुत सुंदर उपदेश मिलता है कि वैष्णव गण जो तिलक करते हैं उस तिलक की महिमा क्या है। यह तिलक करने से हमारी रक्षा होती है, यहां पर शब्द आया है ना रक्षाम, तिलक करने से हमारी रक्षा होती है। यदि हमने तिलक किया है तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है, कमौत नहीं आती है, और तिलक करने से माया से हमारी रक्षा होती है। आप सब जानते हैं कि संसार में माया का प्रभाव बहुत है, तो इस माया के प्रभाव से बचने के लिए यह तिलक धारण करना चाहिए। ये तिलक कवच के समान है। आप जानते हैं पहले के क्षत्रिय युद्ध भूमि में जाते थे तो लोहे के कवच पहन कर जाते थे, कवच कुंडल। वह कवच कितना भी तेज गति से बाण आए परंतु यदि वह कवच है तो वह बाण लग नहीं सकता है। तो कवच रूपी तिलक यदि हमने धारण किया है, माया का कितना भी बड़ा और तेज प्रभाव हो वह माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इसलिए वैष्णवों को भक्तों को तिलक करना चाहिए। और एक मनोभावना भी है कि यदि हमने तिलक किए हैं तो कुछ बुरे काम करने में भी हम दो बार सोचते हैं कि देखो हमने तिलक किया है, चाय पियेंगे तो लोग क्या समझेंगे। तो ये भी एक मनोभावना है, तिलक करने से बुरे कार्य करने से हम बच जाते हैं। मान लो एक दो बार बुरा कार्य हो भी गया तो मन में बहुत ग्लानि होती है, अरे बाप रे मैंने तिलक किया और मुझसे ये हो गया। तो इस प्रकार ये तिलक जो है, तिलक से रक्षा होती है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं तिलक क्यों करते हैं, और आप लोग इस्कॉन वाले इतने लंबे लंबे गाजर जैसे तिलक क्यों करते हैं। तिलक करना है तो छोटा सा टीका कर दीजिए, ये लंबे लंबे तिलक क्यों। भक्तों इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो तिलक किया जाता है वह तिलक किसी का बनाया हुआ रबर स्टैंप नहीं है। पुराणों में वेदों में जो बताया गया है उस अनुसार ये तिलक करते हैं वैष्णव। ये जो तिलक है ये शास्त्रीय तिलक है, ऐसा नहीं कि बस किसी ने डिजाइन करके बना दिया। हमारे महाराष्ट्र में, हरिद्वार में तो पता नहीं है परंतु महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो अपने मन मनोभाव से अपने मन घड़त ढंग से तिलक करते हैं, काला करते हैं, लाल करते हैं, पीला करते हैं, फिर ऐसा बना देते हैं, न जाने कैसे कैसे तिलक करते रहते हैं। परंतु शास्त्र में जैसे कहा गया है वैसा तिलक होना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होना चाहिए। हमारा ये जो तिलक है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है। ये तिलक में ये जो लाइन खींचते हैं, ये जो रेखा है, एक रेखा जो है भगवान शिव जी की है, दूसरी रेखा ब्रह्मा जी की है, और बीच में जो है भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु के बिल्कुल नीचे चरण में तुलसी दल है। इसकी आध्यात्मिक महिमा है, ऐसा नहीं कि बस लोगों को दिखाने के लिए इस्कॉन वाला है, नहीं, शास्त्र में इसका अनुमोदन हुआ है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि ये तिलक कोई साधारण वस्तु नहीं, ये दो जो रेखा है ये दीवार है। तिलक एक मंदिर होता है और इस तिलक रूपी मंदिर में भगवान को बिठाया जाता है। भक्त रोज सुबह अपने शरीर पर तिलक करके मंदिर बनाकर भगवान को बिठाता है। ये दो रेखा जो है दीवार है और बीच में भगवान केशव को बिठाते हैं, भगवान गोविंद को, भगवान माधव को, मधुसूदन को। इस प्रकार से भक्त जो होते हैं भगवान का रोज अवतार कराते हैं अपने शरीर पर, और इससे भक्त की रक्षा होती है। साइंटिफिकल रीजन भी है कि ये तिलक हम यहां पर बाल में करते हैं। आप सब शायद जानते होंगे हमारे शरीर में इतनी नसें हैं, इतनी छोटी छोटी नसें हैं, यदि इसको लंबा किया जाए तो पूरे पृथ्वी का परिघ हो जाएगा। पूरे पृथ्वी एक मनुष्य की नस, एक व्यक्ति के शरीर में इतनी नस है पूरी पृथ्वी को घेर लेगी। और ये सभी नसों का जंक्शन जो है यहां पर होता है। इसलिए आप देखिए, कभी आपने बहुत सोचा होगा तो आपको यहां हाथ में या पांव में नहीं दिखेगा, दुखेगा, आपको दर्द सिर में होगा, क्योंकि सभी नसों का जंक्शन यहां से होकर जाता है। और ये जो तिलक है इसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रभाव होता है। भौतिक प्रभाव, ये गोपी चंदन है और चंदन शीतलता प्रदान करता है। यदि सिर में दर्द हो रहा है, शीतल चंदन के द्वारा वे जो नस वे शांत हो जाती है। भक्त जो होते हैं शांत होते हैं ये चंदन के द्वारा शांत। कुछ भक्तों की प्रकृति होती है स्वाभाविक जन्म जात क्रोधीले होते हैं, गर्म होते हैं, वे शीतल चंदन को भी गर्म कर देते हैं। परंतु जनरली मैं बात कर रहा हूं कि चंदन में इतनी शीतलता होती है कि नस को ठंडा कर देती है, आध्यात्मिक प्रभाव होता है, नस नस में भगवान को भर देती है। इस प्रकार से ये तिलक, और तिलक में वैसे भी बहुत आध्यात्मिक लाभ होते हैं और भौतिक लाभ भी होते हैं। आध्यात्मिक लाभ पद्म पुराण में वर्णन है। एक बार एक व्यक्ति बहुत पाप किया अपने जीवन में, और पाप किया और ऊपर से उसका एक्सीडेंट हुआ, और से लेने के लिए यमराज जी के तीन दूत आए। जैसे ही दूत निकट आ रहे थे उसी समय एक कौवा उस शव के ऊपर गुजर कर गया। और कौवे का स्वभाव तो आप जानते हैं, कहीं पर भी टट्टी कर देता है। उस व्यक्ति के ऊपर टट्टी कर दिया और क्या पता बिल्कुल भाल में ही सीधी रेखा हो गई। तीनों यमदूत आए और आकर कहा कि अरे बाप रे बाप, ये तो इस्कोन वाला है, अर्थात इसने तो तिलक किया है। और यमराज जी ने भागवत के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में कहा है, जीवान वक्ति भगवत गुणनाम धैयम चेतस्य न स्मरति तत चरणारविंदम कृष्णाय नु नमति यत श्री कदापि तान आन सत विष्णु कृत्यान। जिस व्यक्ति ने तिलक किया है उसे कभी मत लाना। तो विष्णु यमदूतों ने देखा कि अरे इसने तो तिलक किया है, चलो भागो भागो, ये तो भगवान के धाम में जाने योग्य है, नरक में नहीं लेकर जा सकते। ये है तिलक की महिमा। कल्पना करो यदि तिलक किया और हम मर गए तो कितना सौभाग्य होगा, भगवान के धाम में चले जाएंगे। इसलिए भक्त को 24 घंटा तिलक रखना चाहिए। कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं तब ही तिलक करते हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं, कुछ लोग घर से बाहर जाते हैं तब तिलक करते हैं, और कुछ लोग घर से बाहर से घर पर आते हैं तब तिलक करते हैं। दोनों लोगों के लिए उपदेश है। कुछ लोग घर में तिलक नहीं करते हैं, घर से बाहर जाते हैं तब तिलक करते हैं, ये तो दिखावा हुआ। यदि आप घर पर हो, तिलक नहीं किया और हार्ट अटैक आ गया तब क्या होगा? कुछ लोग रात को सोते हैं तो मुंह धोकर सो जाते हैं, तिलक नहीं करते हैं, सोचो रात को अटैक आ गया तो क्या होगा? ये मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तिलक तो 24 घंटा रखना चाहिए। और कुछ लोग घर पर तिलक करते हैं परंतु बाहर जाते तो मिटा देते हैं, शर्म लगती है। कुछ समाज ऐसा भी है तिलक करने में शर्म आता है। हमने देखे हैं ऐसे भक्तों को, छोटा सा करके जाते हैं। वास्तव में तिलक करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। आप देखिए संसार के लोग सिगरेट पीने में नहीं शर्माते हैं, पान मावा तंबाकू गुटखा खाने में नहीं शर्माते हैं, शराब पीने में शर्म नहीं करते हैं, तो तिलक करने में क्या शर्म करना है, तिलक होना चाहिए, तिलक और कंठी गले में धारण करना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा कि संसार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति, इस संसार में सबसे बड़ी कीर्ति किसकी है। कीर्ति जानते हैं ना, फेमस, फेम। कुछ लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बन जाना ये सबसे बड़ी कीर्ति है, हमारा लड़का डॉक्टर है। कुछ लोग सोचते हैं वकील बन जाना सबसे बड़ी कीर्ति है। कुछ लोग सोचते हैं इंजीनियर बन जाना सबसे बड़ी कीर्ति है। परंतु ये डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, ये कीर्ति, ये यश कितने साल तक रहेगा बताइए। पहले तो डॉक्टर बनते बनते आधा जीवन बीत जाता है, फिर वो 30-40-50 साल तक डॉक्टर रहता है, और मर जाने के बाद कौन डॉक्टर, कौन व्यक्ति, कुछ नहीं। राय रामानंद ने उत्तर दिया, इस संसार में कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति भगवान के भक्त की, जो गले में तुलसी और भाल में तिलक धारण करते हैं, ऐसे भक्त की कीर्ति युग युग तक अमर हो जाती है। गले में कंठी और भाल में तिलक धारण करने वाला युग युग तक अमर रहता है, वो मरता नहीं है। इसलिए गले में कंठी और तिलक होना चाहिए। भौतिक लाभ आप देखिए, कई बार हम ट्रेन से जाते हैं, फर्स्ट क्लास में होते हैं, और टीसी आते हैं, सब की टिकट चेक करता है, परंतु हमें पूछता तक नहीं है, हमारे और देखता तक नहीं है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी लंदन में अपनी कथा समाप्त करके कहीं जा रहे थे, कार में बैठे थे, कार चलाने वाले ने सिग्नल तोड़ दिया, आगे जाकर पुलिस ने पकड़ा और तुरंत रिसीप्ट बनाने लगा, $100 का फाइन। परंतु जैसे ही महाराज जी ने अपना वो कांच खोला तो देखा तिलक था, तब वो पुलिस वाला वो जो स्लिप बनाया था उसे फाड़ दिया और कहा आप जाइए, जा सकते हैं। यह है तिलक का प्रभाव। खैर भौतिक लाभ के लिए ये तिलक नहीं होता है, परंतु जस्ट मैं कह रहा हूं इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। तिलक धारण करने चाहिए, ये तिलक ही वैष्णव का श्रृंगार है। वैष्णव का श्रृंगार गहना और मोती और गहना नहीं, वैष्णव का श्रृंगार तिलक होता है। तो कहते हैं रक्षायाम चक्रु द्वादश अंगेशु नाम भी, द्वादश अंग में तिलक करने से रक्षा होती है, इसलिए कृष्ण को द्वादश अंग पर तिलक किया और उनकी रक्षा की। अब कृष्ण की विशेष रक्षा करते हैं, गोप्य संस्पृष्ट सलीला अंगेशु करियो पृथक। गोप्य संस्पृष्ट सलीला, गोपियों ने सलीला, सलील माने जल और संपृष्ट माने स्पर्श करना, गोपियों ने जल से आचमन किया। देखिए आचमन की भी बहुत महिमा है, कभी भी कोई शुभ कार्य करने से पहले आचमन करना चाहिए। हाथ में जल लेकर एक बार पीना, फिर हाथ धोना, ऐसे 3 बार उस जल को लेना धोना। क्योंकि हम संसारिक काम करते हैं तो हमारा जो मुख है वो झूठा हो जाता है। यदि आपने कुछ अपशब्द बोल दिए, झूठन मुंह में रह गया, तो ये मुंह अपवित्र हो जाता है। इसलिए शुभ कार्य करने से पहले आचमन करना चाहिए। गोपियों ने संस्पृष्ट सलीला जल के द्वारा आचमन किया। और अंगेशु करियो पृथक, और अपने कर के द्वारा कृष्ण के अलग अलग पृथक पृथक अंगों में न्यस्य आत्मनि अथ बालस्य बीज न्यासम अकुर्वत। अपने हाथों से पहले हाथ को पवित्र कर लिया, मुख को पवित्र कर लिया, और फिर अपने हाथों से बालक की सभी अंगों की रक्षा करने लगे, जिसे बीज न्यास कहा जाता है। करन्यास, अंग न्यास और बीज न्यास। बीज का न्यास अर्थात बीज का अर्थ होता है मंत्र का पहला अक्षर, उस मंत्र के पहले अक्षर के द्वारा बीज न्यास किया जाता है। जैसे एक मंत्र है विष्णवे नमः, तो विष्णवे नमः में वी जो है वह बीज है। जैसे एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसमें ओम जो है ये एक बीज है। और न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना, रखना। तो आप इतना ही समझिए, यह सब गोपियां हाथ में वो मिट्टी लेकर वह हाथ कृष्ण के अंग के ऊपर रखती थी और बीज का उच्चारण करती थी। एक आचार्य ने टीका में बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बताया है। सुखदेव गोस्वामी तो इतना कह दिया कि बीज न्यास किया, परंतु वो बीज न्यास कैसे किया? तब कहती हैं ये हाथ कृष्ण के शरीर के ऊपर रखकर बोलती हैं ओम नमो दक्षिण करतले है, ओम नमो वाम करतले है, एवं यम उभयो कर पृष्ठयो, ओम दक्षिण अंगुली संदहो, हम दक्षिण मणिवंदे है, कम दक्षिण कर्पूरे, इम दक्षिण बाहुमूले, इम वामांगुली संदहो, शिम वाम वामम मणिवंदे, ओम वाम कर्पूरे, इम वाम बाहुमूले, एवं अम पादशी अम जानुनो। ये जानु जो होती है ना, ये सब अंग का नाम है। ये सब अंग के ऊपर गोपियां हाथ रख रख कर ये बीज न्यास कर रही हैं। बीज माने मंत्रों का न्यास कर रही हैं कि अब ये जंगा कृष्ण की जंगा को कभी तकलीफ न हो, कृष्ण के कर को कभी तकलीफ न हो। और सब भगवान का नाम ले रही कि ये भगवान इसकी रक्षा करे। ओम उर्वहो अम कटयो, कटी प्रदेश पर रख के कहा होगा ओ अम कटयो हो, हम उदरे कम हृदये, अमूरसी इम कंठे, विम भुजयो ओम मुखे, इम मूर्धनी। तो इस प्रकार अंगेषु करयोश्चून्यस्य, इस प्रकार ये सभी गोपियां अंग न्यास कर रही है, अपने बालक की रक्षा कर रही है। आज भी संसार में कुछ ऐसी माँ है, कभी कभी अपने बालक को रोग हो जाता है, किसी की नजर लग जाती है तो माँ नजर उतारना जानती है। लेकिन ये गांव में रहने वाली, शहरों में रहने वाली माँ नजर क्या होता है यही नहीं पता है। अब ब्यूटी पार्लर में जाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, अपने बाल संवारने में, साड़ी पहनने में, अपने रूप को सजाने में से ही कोई फुर्सत नहीं मिलती है, ये नजर उतारना क्या जाने। परंतु एक माँ को यह सीखना चाहिए, कम से कम कृष्ण के लिए तो सीख लेना चाहिए। तो कभी कभी अपने पुत्र के लिए भी काम में आ गया, माँ में यह गुण होना चाहिए। इस प्रकार से सभी गोपियां कृष्ण की रक्षा कर रही हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अव्यादजो अंगरी। अब वे एक एक भगवान का नाम ले लेकर कृष्ण के अंग को स्पर्श कर रही हैं और भगवान का नाम लेकर कह रही हैं कि अजन्मा भगवान कृष्ण के पैरों की रक्षा करें। मणिमान तव जानुहु, मणिमान आपके घुटनों की रक्षा करें, अथ उरु तथा जांगों की रक्षा करें, यज्ञ अच्युत कटितटम, यज्ञ पुरुष भगवान अच्युत इस कृष्ण के कमर की रक्षा करे, जठरम हई ग्रीव, भगवान हई ग्रीव कृष्ण के जठर की रक्षा करे, रित केशव भगवान केशव कृष्ण के हृदय की रक्षा करे, त्वत उरह ईश इनह तू भगवान सूर्यदेव कृष्ण के वक्षस्थल की रक्षा करे, कंठम विष्णु भुजम, भगवान विष्णु इस कृष्ण के कंठ की रक्षा करे, उरुक्रम मुखम, भगवान उरुक्रम कृष्ण के मुख की रक्षा करे, और ईश्वर कम भगवान शिव कृष्ण के सिर की रक्षा करे। तो इस प्रकार ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण की रक्षा कर रही हैं, रक्षा करते जा रही हैं। आगे कहती हैं चक्रग्रत चक्री अग्रत सह गवह, चक्रधारी भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए आगे ही रहे, कृष्ण के आगे से कहीं दूर न जाए। गदाधारी सहगव हरि अस्तु पश्यात्। भगवान का चक्र कृष्ण की रक्षा करने के लिए आगे रहे और भगवान हरि की गदा कृष्ण के पीछे रहकर कृष्ण की रक्षा करे। त्वत् पार्श्वो धनु असी मधुहा अजनश्च। और धनुष और खगधारी मधुसूदन ये आपके बगल में खड़े रहे। कोणेषु शंख उरुगायः। और चारों कोनों से शंखधारी भगवान उरुक्रम आपकी रक्षा करे। देखिए कह रहे शंख आपकी रक्षा करे। शंख भगवान कृष्ण की कैसे रक्षा कर सकता है? कहते हैं शंख, शंख से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि के द्वारा आसुरी शक्ति का विनाश होता है। आज भी हमारे गांव में कहावत है, शंख बाजे बलाए भागे। शंख बजने से ही जो बला होती है वो भाग जाती है। शंख में अद्भुत सामर्थ्य है। ये शंख ध्रुव महाराज को स्पर्श होते ही चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव महाराज में आ गया। आचार्य कहते हैं शंख में आसन्य वायु रहती है। शंख में से जो वायु निकलती है उस वायु को आसन्य कहा जाता है। ये आसन्य वायु जब शंख से निकलती है तो शत्रु पक्ष वाले इस वायु को सुनकर, इस ध्वनि को सुनकर उनका मद नाश हो जाता है। अभिमान अहंकार उसकी शक्ति विहीन हो जाती है। तो शंख में अद्भुत सामर्थ्य है। कते शंख कृष्ण की चारों कोने से रक्षा करे। उपेंद्र तारक्ष क्षितो हलधर। ऊपर से गरुड़ रक्षा करे और नीचे से हलधर, पृथ्वी से भलधर रक्षा करे। और पुरुष समंतान, और भगवान परम पुरुष कृष्ण की सभी दिशाओं से, सभी ओर से रक्षा करे। देखिए कृष्ण की रक्षा करने के लिए गोपियां सभी भगवान, सभी देवताओं का नाम ले रही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रख रही है। भगवान कोई हमारे नौकर नहीं है। गोपियों के मन में ये भाव है कि भगवान सब जगह पर है ही। भगवान को भक्ति से याद कर रही है, असल भगवान की भक्ति कर रही है। यही है भगवान की भक्ति। संसार में सब लोग, प्राय सब लोग अपनी रक्षा करने के लिए मेहनत करते हैं। मैं सेफ रहूं, मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए, सेफ डिपॉजिट होनी चाहिए, वॉचमैन होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए। अपनी रक्षा करने के लिए तो सब लोग मेहनत करते हैं, परंतु इस प्रकार कृष्ण की रक्षा करने के लिए जब कोई मेहनत करे तब हृदय में शुद्ध भक्ति, शुद्ध भाव यह माना जाएगा। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए। ये गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश। भगवान ऋषिकेश कृष्ण के इंद्रियों की रक्षा करें। अब गोपियों को पता नहीं है कि दुनिया भर की और सभी देवताओं की रक्षा करने वाला यही कृष्ण है, परंतु उसे अपना पुत्र मान रही है इसलिए ऐसा कह रही है। प्राणान नारायण वतु। भगवान नारायण कृष्ण के प्राणों की रक्षा करे। श्वेत द्वीप पति चितम। श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान कृष्ण के चित्त की रक्षा करे। मनः योगेश्वरः वतु। और भगवान योगेश्वर कृष्ण के मन की रक्षा करे। प्रश्नि गर्भ ते बुद्धिम। भगवान प्रश्नि गर्भ कृष्ण के बुद्धि की रक्षा करे। आत्मनाम भगवान पर। भगवान परमात्मा कृष्ण के अहंकार की रक्षा करे। ये क्या हो गया, कृष्ण के अहंकार की रक्षा करे? मतलब वास्तव में एक एक बातें समझने जैसी हैं। अहंकार की भी रक्षा होती है। हाँ, अहंकार का अर्थ होता है ये जो अहंकार जो है व्यक्ति को अपनी पहचान बनाए रखता है। कभी कभी व्यक्ति अपना अहंकार, अपनी पहचान भूल जाता है। जो पागल व्यक्ति होते हैं वे अपनी पहचान भूल जाते हैं। तो यहाँ गोपियां कहती हैं कृष्ण की अहंकार की रक्षा हो, क्रीडंदम पातु गोविंदम, और जब कृष्ण खेल रहा हो तब भगवान गोविंद इसकी रक्षा करे। एक माँ को अपने पुत्र के लिए, अब कृष्ण को पुत्र बनाया है तो कृष्ण के लिए, और साधारण समाज में भी अपने पुत्र के लिए भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं बालक कभी कभी खेलते खेलते गिर जाते हैं, लग जाता है, परंतु यहाँ कहते क्रीडंतम पातु गोविंदम, जब मेरा बालक या कृष्ण खेल रहा हो तब गोविंद इसकी रक्षा करे। शयानम पातु माधव, और जब यह कृष्ण सो रहे हो तो भगवान माधव कृष्ण की रक्षा करे। व्रजंतम अव्याध वैकुंठ, जब कृष्ण चल रहा हो तब भगवान वैकुंठ इसकी रक्षा करे। आसीनम त्वाम श्रियः पति, और जब यह कृष्ण चल रहा हो तो भगवान श्री के पति, लक्ष्मी के पति कृष्ण की रक्षा करे। मुंजानम यज्ञ भुक् पातु, जब कृष्ण भोजन कर रहा हो तब यज्ञ के भोक्ता भगवान कृष्ण इसकी रक्षा करे, भगवान इसकी रक्षा करे। वास्तव में ये बहुत विचारणीय वस्तु है कि भोजन करते समय भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी भोजन कर रहे हैं तो फूड पॉइजन हो सकता है, क्योंकि बच्चों को बाहर का खाने की आदत होती है। तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें फूड पॉइजन न हो, या फूड में किसी ने पॉइजन न मिला दिया हो। इसलिए भगवान को प्रार्थना करके यदि हम खाते हैं तो निश्चित उससे फूड में यदि पॉइजन भी है तो उससे मुक्त हो सकते हैं। इतिहास खोलकर देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को भोजन में जहर मिलाकर दिया गया था, परंतु प्रहलाद महाराज ने भगवान गोविंद का नाम लिया, और भगवान का नाम लिया तो वह जहर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। शिव जी ने जहर पिया था, परंतु कृष्ण का नाम लेकर वह जहर पिए, जहर कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं फूड पॉइजन की बात कर रहा हूं, यहां पर कह रहे हैं भुंजानम यज्ञ भूख पातु, भोजन करते समय भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और ये सब तो बहुत दूर की बात है, कल का इतिहास। मारवाड़ में रहने वाली मीराबाई को विष दिया गया, और मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इतना कह के मीराबाई ने वह विष पी लिया, विष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो, वो तो गली गली हरि गुण
टोके नहीं,
कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं,
कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं,
मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी,
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 बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग,
बैठी संतों के संग
बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग,
बैठी संतों के संग रंगी मोहन के संग,
मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी,
मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी,
मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी,
मेरा प्रेमी को मनाने लगी,
वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन,
वो तो गली गली हरी गुण
महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली,
तो हरी हरी
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, नाची मिला के भाव में राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया,
विष्णु दिया मानो अमृत दिया,
राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया,
राणा ने विष्णु दिया मानो अमृत पिया,
मेरा सागर में सरिता समाने लगी,
मेरा सागर में सरिता समाने लगी,
मेरा सागर में सरिता समाने लगी,
मेरा सागर से सरिता समाने लगी,
दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे,
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 मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी,
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 वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी,
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी,
महलों में जोगन चली मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, महलों में परी मन के जोगन चली मेरा रानी
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा
राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
गली साकरी घेरे नितही
गली साकरी घेरे नितही
गली साकरी घेरे नितही
गली साकरी घेरे नितही
कहीं को दान ले बस बसही
कहीं को दान ले बसही
कहीं को दान ले बर बसही लुटे मटकी हूँ पे लुटे मटकी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
कुंज गली में जो मिल जावे
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 भैया पकड़ के रास मचावे
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 लार करे हूँ पे लार करे हूँ पे लागे बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली वालो
तरसावे लाला मोहे काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे, लाला मोहे काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे रे लाला मोहे, काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे।
मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे, काहे को तरसावे,
मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे, काहे को तरसावे।
सोय गई और खोय गई मैं, और खोय गई मैं,
सोय गई 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 और खोय गई मैं।
मधुर बजाई दही बांसुरिया मोहे काहे को तरसावे,
मधुर मोहे काहे को तरसावे।
मेरे घर कब हुन आवे जावरिया मोहे काहे को तरसावे,
मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे लाला मोहे, काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे लाला मोहे, काहे को तरसावे।
मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
चलो प्रेम से नाचिए सावरिया मोहे काहे को तरसावे।
सुन सुन मोह पे रहियो न जावे,
सुन सुन
मोह पे रहियो न जावे,
सुन सुन
मो पे रहियो न जावे,
सुन सुन मो पे रहियो न जावे,
सुन सुन मो पे रहियो न जावे,
सुन सुन मो पे रहियो न जावे।
हाँ चलगत में बाज पायलिया मोहे काहे को तरसावे, मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे रे लाला मोहे, काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे रे लाला मोहे, काहे को तरसावे।
मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे।
होल चलूं तो चलियो न जावे,
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 होल चलूं तो चलो 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 न जावे।
मांगू तो जागे सासुरिया काहे को सरसावे,
मांगू तो जागे सासुरिया मोहे काहे को तरसावे,
मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे रे लाला मोहे, काहे को तरसावे,
काहे को तरसावे रे लाला मोहे, काहे को तरसावे।
मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे, सुन सुन
हाँ।
डोले पकड़े पासुरिया मोहे काहे को तरसावे
हाँ।
डोले पकड़े पासुरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर कब न आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे रे लाला मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे ओ लाला मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे रे लाला मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे ओ लाला मोहे काहे को तरसावे
मेरे घर कब न आवे
बहुनावे सावरिया मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे रे लाला मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे ओ लाला मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे रे लाला मोहे काहे को तरसावे मेरे घर कब न आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे
मेरे घर
कब न आवे सावरिया
मोहे काहे को तरसावे
तोहे उखल से मत रोक गे रंग मारी
तोहे उखल से बनवाई लोगी मत रोक गे रंग मारी
तोहे उखल से बनवाई लोगी मत रोक गे रंग मारी
तोहे उखल से बनवाई लोगी मत
रोक गे रंग मारी तोहे दिन हाथ लगाई लोगी मत फोड़ दही की मटकी
तोहे काहू दिन हाथ लगाए दोगी
मत फोड़
मत फोड़
मत फोड़ दही की मटकी रे लाला मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी लाला मत फोड़ दही की मटकी
तोहे काहू दिन हाथ लगाए दोगी मत फोड़ दही की मटकी
तोहे काहू दिन हाथ लगाए दोगी मत फोड़ दही की मटकी
हाँ मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की
मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की
तेरी गौस में नहीं आने की मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की
मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की
तेरी गौस में नहीं आने की
तेरी गौस में नहीं आने
तेरो रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तेरो
रस तावन है तेरो रस ताबंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी
तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी
माँ तू यशोदा से कह आई मात यशोदा से कह आई
मात यशोदा से कह आई
हर चल तेरी करेगी पिटाई
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 तो है ऊखल तो है ऊखल से बंधवाए दूंगी मट फोड़ दही की मटकी
तो ओखल से बनवाए दूंगी मट फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
तोहे काहू दिन तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही के मटके भयो अनोखो तू उत्पाती
भयो अनोखो तू उत्पाती
भयो अनोखो तू उत्पाती
भयो अनोखो तू उत्पाती
नेक शर्म तो
शर्म तो
कू
नहीं आती
भयो अनोखो तू युत पाती
भयो अनोखो तू युत पाती
नेक शर्म तो कू
नहीं आती नेक शर्म तो कू नहीं आती
तेरी कंस पे पे खबर कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी
कंस पे खबर कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
तोहे काहू दिन तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी
तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी
तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Shri Krishna Chandra Bhagavan ki
jai,
Shri Radha Madhav Bhagavan ki
jai,
Shri Radha Shyam Sundar Bhagavan ki
jai,
Hari Naam Sankirtan ki
jai,
Nidhai Gaur Premanande
Hari Hari.
लाल गोविंद जी का और समस्त भक्त वृंदों का दंडवत करती हूँ. मैं 3 साल से इस्कॉन में हूँ और तभी 2 साल तलक मैं ऐसे ही भक्ति में आती थी, देखती थी लेक्चर है या सुनती थी, कुछ समझ में नहीं आता था. तो भी एक बार 2 साल के बाद एक दयाल चंद्र प्रभु जी ने बताया कि भागवतम पर अभी सीनियर सिटीजन का मीटिंग था, तभी उन्होंने बोला अभी आप लोगों को 60 साल से ऊपर हो गए, 60 साल तक आपका एज है, अभी इसके ऊपर जितना भी है वो बोनस है, आपको कितने जी सकोगे आज वो कुछ पता नहीं, इसके लिए एक सेकेंड भी आप वेस्ट मत करो, जितना भी आपके टाइम है आज से आप भागवतम पढ़ना स्टार्ट करो. तो मैंने भागवतम पढ़ना चालू किया अभी, क्योंकि 1 साल के अंदर मैंने पूरा भागवतम से रात दिन बैठ के कंप्लीट किया, क्योंकि कैसा भी करके मुझे, और भगवान को पहले प्रे किया कि मेरे को मरने से पहले मैं पूरा भागवतम सेट कंप्लीट पढ़ना चाहती हूँ और इतनी मेरे ऊपर कृपा करो क्योंकि मेरे को पूरा भागवतम समझना है कि क्या है करके. तो मैंने पूरा पढ़ा तो भी क्या है, भागवतम जैसा इतना महान ग्रंथ समझने की स्थिति में हम लोग नहीं है, उसको तो बहुत ये सब समझने के लिए कितना भी पढ़ के सुन नहीं सकते अभी. तो भी हमने बहुत, हमारे गोपीनाथ मंदिर में भागवतम का लेक्चर होता है तो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, तो भी 10-20%, वो भी उधर लेक्चर भी हाई लेवल पे होता है. और जब भी मैंने एक बार हिज ग्रेस लाल गोविंद जी का जोगेश्वरी में भागवतम मुझे इनवाइट किया था किसी ने, तो उधर गई तो इनका लेक्चर देख के मैं एकदम पागल सी हो गई. मीन्स इतना अच्छा लगा, भागवतम इतना स्वीट है और वो भी इनके मुँह से, तो और भी इतना. तो मैंने आने के बाद एल मेरी फ्रेंड्स को सबको बताया कि, और फोन किया अगर आप लोगों को आने का है तो आ जाओ कि हम लोग जाएंगे. तो हर एक बिजी थे तो मैंने नहीं छोड़ा, तो मैं जितना इनके दिन थे उधर मैंने अटेंड किया और बार बार इनको सबको बोला इनका लेक्चर किधर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था तो किधर से भी मैंने इनका कॉन्टेक्ट नंबर, मेरे हाथ में एक पैम्पलेट आया उसी टाइम, तो उसमें गंगा तट पर भागवतम का लेक्चर है तो पता चला. तो इनका है 8-7 दिन तलक है, तो इतना अगर हमको वो भाग्य मिले इधर आने का तो क्या, अकेली घर वाले, घर में कोई डिवोटी नहीं है तो मैं अकेली डिवोशन में, मंदिर तक भी कोई नहीं आते, तो अभी क्या करें, किसको साथ लेके हरिद्वार कैसा जाए. तो मैंने मेरी फ्रेंड चैतन्य प्रेम स्वरूपिणी माता जी को पूछा कि हम लोग जाएंगे क्या, तो वो बोले कि भागवतम सप्ताह तक मैं आ सकती हूँ, इतना मेरे को छुट्टी नहीं मिलती. तो एक एक करके बाकी मालन माता जी सब हर एक को पूछा, कृष्णा माता जी वो सब तैयार हो गए आने के लिए. तो अभी सबको डाउट कि कैसा जाने का, एक पैम्पलेट के ऊपर तुम लोग किसको कॉन्टेक्ट कर, तो कैसे भी करके इनका फोन नंबर निकाला और इनको डायरेक्ट मैंने फोन किया कि नहीं घर वाले हम लोगों को, और वो भी हम लोग सीनियर सिटीजन है और लेडीज है, हमारे साथ कोई नहीं है. तो मैंने इनको डायरेक्ट फोन किया और हम लोग गोपीनाथ से आपके साथ इधर आना चाहते हैं भागवतम सप्ताह के लिए, तो आ सकते हैं क्या. उन्होंने बोला, और हमारे, हम सब सीनियर सिटीजन है, आप हमारी जिम्मेदारी लेके, तो उन्होंने बोला आप कुछ फिक्र मत करो, आप आ जाओ, मैं नीलेश को भेजता हूँ और नीलेश आपको मदद करेगा. तो नीलेश जी आए, उन्होंने हमको अच्छी तरह से गाइड किया और उसके बाद हम लोग इधर आए और फर्स्ट डे में हम लोगों ने भागवतम लेक्चर, तब तक बाकी लोगों को मालूम नहीं था कि इनका लेक्चर कैसा है, एक दो को कुछ मालूम था, तो इन्होंने सुना एक इतने खुश हो गए ये लोग घर में जाके, और तू जो बता रही थी वो ठीक है, इतने खुश हो गई। तो बाद में और शाम के सत्र में और इनका एकदम गला खराब है तो हम सब लोग अपसेट हो गए और हम सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। मैंने खास इनको बोला मैं आपके लिए एक राउंड रोज करूंगी मरते दम तलक कि इनको, क्योंकि इनकी इनकी आवाज इतनी, और ये तो इतने अनमोल हीरे भगवान ने अपने को गोलोक धाम से इधर भेज दिया है कि इतने यंग एज में इन्होंने इतना ये कर दिखाया कि आज तक भागवतम का हमने बहुत जगह सुना कि हम जैसे लोगों के लिए हर एक चीज हर एक वर्ड इतनी अच्छी तरह से जैसे केजी के बच्चों को सिखाते हैं उस तरह से इन्होंने सिखाया, ये हमको बहुत अच्छा लगा इतना। और इसके लिए हम सब लोग इनके पीछे, हमें मेरी फ्रेंड्स बोलते हैं अरे सच्चे हम लोग लाल गोविंद जी के पीछे पागल है करके। अभी और अभी रात को 1:30-2 बजे हम लोग ये उठ के ये जल्दी जाने का, इधर मिस नहीं करने का, और हले आरती करने का, इधर से इनका लेक्चर चैंटिंग, इनका लेक्चर शुरू होने से पहले 16 माइल कंप्लीट करने का, और उसके पहले पूरा का एक कार्यक्रम होने के बाद चैंटिंग होने के बाद लेक्चर सुनने का, और बाद में प्रसाद लेके सीधा गंगा तट पर जाके स्नान करने का, स्नान करके रूम में जाके वापस 3:30-3:30 भागदौड़ करके इधर आते हैं हम लोग कि पहले आके कुर्सी पकड़ते हैं क्योंकि हम लोग सीनियर सिटीजन थोड़ा प्रॉब्लम है पाँव में, इसकी वजह से हम लोग पहले आके बैठते इधर। तो इतना अच्छा और इनका ही नहीं और भागवतम इतना स्वीट है और वो भी इनके मुख से और भी स्वीट, तो हमको पहले इसका ये नहीं टेस्ट इतना नहीं आया था भागवतम का, तो अभी तो सब उसी में डूब गए हैं हम लोग भागवत में कि, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको हर एक इनका बॉम्बे में या आउट ऑफ बॉम्बे हर एक जगह इनका प्रोग्राम में शामिल होने का, और मैं आज्ञा चाहती हूँ आपसे प्रभु जी कि हमको वो परमिशन दे, और भगवान से प्रे करती हूँ कि इनका हेल्थ और इनका गला हर टाइम हमेशा अच्छे रखे और इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, क्योंकि जोगेश्वरी में भी मैंने एक बार सुना था कि इनका लास्ट डे इनका लेक्चर में इनका गला खराब था और डॉक्टर ने इनको कंप्लीट बोलने के लिए मना किया था, तो भी इन्होंने 3.5 घंटा लेक्चर दिया और वो भी लास्ट इतनी अच्छी तरह से, और शिवरात्रि का दिन ऐसा कुछ था, बहुत अच्छी तरह से लेक्चर दिया। तो यही हमको, हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका संग हमें हमेशा हमेशा मिले और आपके थ्रू हम हर एक भागवतम का हर एक चीज हर एक ये हम आपसे सीखे और समझ सके, मेन यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और एक बार बद्री विलास प्रभु जी ने इधर आने के बाद हमारा बहुत ख्याल रखा और उनके लिए हम बहुत आभारी है हम सब लोग, और हम 3 बार उन हरि बोल करके उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं, और उन्होंने उस दिन रात को इतना भागदौड़ करके इतने 60-70 डिवोटी के लिए रिक्शा नहीं आया टेम्पो नहीं आया करके किधर से भी बस पकड़ के लेके आए हम लोगों को, इतना अच्छी तरह से गंगा स्याही गंगा स्नान कराया, और बाद में इधर आने के बाद कल हम लोगों ने जो निर्जला किया था उनके लिए खास लींबू शरबत बना के, और वो भी कुछ तीर्थ का पानी से उन्होंने गंगोत्री का ऐसा कुछ पानी से हमको सब लोगों को अपने हाथ से पिलाया उस दिन कल, और यही इतना कोई भी इतना नहीं कर सकता है, केवल इसको उनके प्योर प्योर डिवोटी ही कर सकता है। और एक बार लास्ट लाल गोविंद जी का वो अकेले नहीं इसमें उनका पूरा फैमिली साथ है, और यही भगवान से प्रार्थना है कि ये लाल गोविंद जी की प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु, इनका दो मिशन पूरा करने के लिए भगवान ने इनको धरती पर भेज दिया है। और सब लोग इनके लिए प्रार्थना कीजिए, इनके हेल्थ के लिए प्रार्थना कीजिए, इनके गले के लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
मैं सभी उपस्थित वैष्णवों को प्रणाम करती हूँ और हिज ग्रेस लाल गोविंद जी प्रभु को भी प्रणाम करती हूँ। मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी फ्रेंड, हम लोग के जो ग्रुप टीम है, उन्होंने तो सब कुछ कह तो दिया है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि लाल इस ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी का जो प्रवचन है वो बहुत ही अच्छा था और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। और वो सुन के जैसे नलिनी माता जी ने कहा कि हम लोग पागल हो गए, सचमुच है, वास्तविक हम लोग पागल हो गए। हम लोग अभी मुंबई में किधर भी इनका प्रवचन होएगा, हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग सब टीम के साथ हम लोग अटेंड करें। और इतना दिन तो हम लोग को मालूम नहीं था कि इन लोग का हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी का प्रवचन मलाड में और नज़दीक के हम लोग जिधर रहते हैं उधर हो रहा है। लेकिन अभी नीलेश प्रभु जी ने हम लोग को कहा था कि उनका मलाड में भी हो रहा है, तो हम लोग उधर अटेंड करने के लिए वंस इन ए वीक हम लोग जाना चाहते हैं। और इन लोग हिज ग्रेस लाल गोविंद जी का जो प्रवचन है उसमें हरेक शब्द का जो मीनिंग है वो एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के उपमा देके ही सब प्रवचन हो रहा है और इतना डिटेल में हो रहा है कि हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे नलिनी माता जी ने कहा कि केजी स्टूडेंट्स को बताते हैं, वैसा हम लोग को दिमाग में सब आ गए हैं। हम लोग सुनते हैं प्रवचन राधा गोपीनाथ में, लेकिन इतना हम लोग को मीन्स डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन इधर हरेक शब्द हरेक मीनिंग इतना डिटेल में बताया गया है कि हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यहाँ पे श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से भी अनेक भक्त आए हैं।